Did you catch Meha on 104.8 Ishq this morning?
Very, very good morning to you, Hussein. How are you doing?
I'm good as well, and good morning to you too.
My producer is a very big fan of you, and that is why this was an obsessive pursuit for him. Ki, no, we have to get him on air, we have to get him. So in the process, main aapke baare mein kuch padh rahi thi, and aapne apna MBA kiya hai IIM Indore se, and then you completely drastically changed your line after working, and now you're a proper lyricist, writer, screenwriter. It's a different life altogether.
जी बहुत।
मैं अपना भी बताती हूँ, मैंने MBA करा है, मैं पेंट बेचती थी, एंड नाउ आई एम एन RJ। तो एंग्जाइटी थोड़ी मुझे समझ आती है, मैं रिलेट करती हूँ, बट आपकी जर्नी कैसी रही है? हाउ हैव यू ड्रास्टिकली गॉन फ्रॉम वन थिंग टू द अदर?
देखिए, ड्रास्टिकली इट हैज बीन गॉन फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स ड्रास्टिकली हुआ है। मतलब जब आप बिल्कुल आज बैठ के देखते हैं तो ड्रास्टिकली हुआ, बट आई थिंक आई वाज ऑलवेज थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन तो हो ही रहा था।
अच्छा।
इवन दो मैं कभी राइटर बनना नहीं चाहता था, बट जो चीजें मैं कर रहा था वो अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं पैसिवली प्रिपेयर कर ही रहा था आने के लिए। इवन दो मैं एक्टिवली, मतलब मेरे कभी इच्छा नहीं थी मेरे राइटर बनने की और वगैरह। जैसे मैं बॉम्बे में पहले CA करने के बाद आया था, सबसे पहले 2009 से 11 के बीच।
अच्छा।
तो हाँ, तो मैं अनसिलिंग में काम करता था, मतलब एज एन ऑडिटिंग अश्योरेंस में था मैं।
ओके।
एंड तब मैंने ओपन माइक्स वगैरह डिस्कवर किए थे। नहीं, टाइम नहीं मिलता था महीने में, लेकिन तब ओपन माइक का कल्चर इतना था नहीं ना।
हाँ।
नया शुरू हुआ था।
हाँ।
एक्चुअली बॉम्बे में पहली दफा ही शुरू हुआ था।
हाँ।
तो महीने में एक पोएट्री का इवेंट हुआ करता था एक जगह पे।
हाँ।
एक या दो घंटे के लिए, तो बस वो उतने ही टाइम में जा पाता था। तो वहां से मुझे लिखने का काफी शौक लगा, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले जो बहुत अच्छा लिखते भी थे, तो बहुत मोटिवेट होता था उससे।
अच्छा।
एंड वो लोग बहुत इंकरेज भी करते थे, जितने भी दोस्त मिले मुझे। पढ़ता मैं हालांकि बचपन से था, पर कभी लिखने का ऐसा बहुत ज्यादा शौक था नहीं। मगर ये पोएट्री ओपन माइक जो मैं 2009-11 के बीच में मैंने रहा, उसमें मतलब काफी मुझे मतलब सीखने को भी मिला, काफी इंकरेजमेंट मिला, काफी मतलब दूसरे राइटर्स को देख के। होता है ना, आप जिंदगी भर अपने राइटर्स के बारे में सोचा है बुक्स देख के या उनके बारे में पढ़ा है, पर एक आदमी आपके सामने कविता पढ़ रहा है और आप उसको जानते हो क्योंकि वो आपकी उम्र का है और आपके सामने खड़ा है, उससे बाद में बात कर सकते हो कि आपने कैसे लिखी वगैरह।
हाँ, आप उसको
तो वो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था।
हाँ, बिल्कुल ह्यूमनाइज कर दो आप इंसान को।
वहां से शौक लगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं MBA करने चला गया। 2 साल MBA किया, फिर मैं कलकत्ता में नौकरी किया।
हाँ, मैंने पढ़ा आप कुछ हेड ऑफ फाइनेंस थे इन अ कलकत्ता बेस्ड कंपनी।
तो मैं काफी हद तक छोड़ दिया था, लिखना भी छोड़ दिया था मैंने MBA में और नौकरी के दौरान भी। पर पता नहीं क्यों, मतलब भाई पढ़ता तो रहता ही था, मूवीज वगैरह देखता था, सीरीज वगैरह देखता था, एक एनालिसिस जो चलता रहता था कि अरे ये कैरेक्टर ये बोल रहा है।
हाँ।
ये गाने में इस तरह की लाइन आई है।
हाँ।
और इस गाने में धुन ज्यादा अच्छी है, बोल अच्छे नहीं है, इस गाने के बोल बहुत अच्छे हैं पर धुन बड़ी बेकार है।
मतलब
इस तरह की चीजें पता नहीं क्यों दिमाग में चलती ही रहती थी। मतलब कोई ऐसा राइटर बनने का प्लान नहीं था, मगर ये चीजें डेवलप आपको करती हैं। मतलब ये मुझे अब रियलाइज होता है रेट्रोस्पेक्ट में।
बट एक मोमेंट ऐसा आया होगा, एंड आई नो दैट लाइफ इतनी ड्रामेटिक नहीं होती है, बट देयर मस्ट हैव बीन लाइक दिस वन दैट्स इट मोमेंट।
नहीं, कलकत्ता में हुआ था ऐसा, सही बोल रहे हैं आप। तो मतलब काफी मोमेंट्स ऐसे थे, मतलब मुझे जैसे मतलब एक जो दोस्त है, जो मेरा राइटर दोस्त है आज की तारीख में, वो कलकत्ता जब मिलना है तो तब वो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बॉम्बे आके लिखो। फिर उसके अलावा बॉम्बे, मतलब कलकत्ता में जब मेरा प्रमोशन हुआ, एक्चुअली मैं चीफ मैनेजर फाइनेंस था, वहाँ से हेड ऑफ फाइनेंस था हुआ, तो एक्चुअली प्रमोट होकर मुझे रियलाइज हुआ कि अब ये तो जो मैं आज कर रहा हूँ, मतलब 250 करोड़ की कंपनी में, वो शायद मैं अगले 10 साल बाद 1000 करोड़ की कंपनी में करूंगा, 1500 करोड़ की कंपनी करूंगा
और यही करूंगा,
लिमिटेड कंपनी में करूंगा।
हाँ।
हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बुरी लाइफ होती, ऐसा नहीं है कि वो खराब चॉइस होती, मगर मेरा मतलब जो थॉट मेरे दिमाग में था, ये था क्या मैं ये करना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट दिस। इट वॉज नॉट अ बैड चॉइस, मतलब अगर आज की तारीख में फाइनेंस मैनेजर की तरह काम कर रहा होता बॉम्बे में, आई बीन इक्वली हैप्पी एंड आई यूज्ड टू लाइक माई जॉब। ऐसा नहीं था कि आई वाज फ्रस्ट्रेटेड इन माई जॉब एंड आई वाज लाइकिंग माई जॉब। तो मुझे बस लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने अपने को 5 साल दिए थे बॉम्बे आने में, 5 साल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस जॉब कर लेंगे कोई ऐसा मतलब, पर एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया.
मेरे के
लिए ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मतलब फेलियर होगा.
हाँ, मेरे ख्याल में आई थिंक फाइनेंस के लोग थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं एंड दे डोंट लूज देयर प्रैक्टिकल सेंस ऑफ लाइफ. यू नो, मैं एक कॉन्वर्सेशन कोट करना चाहूंगी. जावेद साहब ही सेड दैट यू नो एज एन आर्टिस्ट हमको आर्ट और क्राफ्ट के बीच में फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आर्ट इज वेरी नेचुरल इन आवर इंस्टिंक्ट्स एंड क्राफ्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप एंड दैट्स द पेन पॉइंट. एंड
बहुत पेनफुल था
क्योंकि मैं आपका अगर बॉडी ऑफ वर्क देखती हूँ, यू हैव बीन अ राइटर फॉर मूवीज एंड लिरिसिस्ट फॉर मूवीज, स्क्रीन राइटर, एंड आपने कुछ गाने वेब सीरीज के लिए भी लिखे हैं. योर टीवीएफ ट्रिपलिंग इज सीजन 2 इज योर मोस्ट रीसेंट वर्क. तो इस सब में यू नो आई एम गेसिंग देयर इज अ सर्टेन इंटेलिजेंस दैट गोज इनटू डिसाइफरिंग द डिफरेंस कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए. सो व्हाट इज दैट जर्नी बीन लाइक, बिकॉज नाउ दिस इज पोस्ट MBA and this is now a whole new life. तो कैसे आपने ये journey craft अपना?
वो जो आपने जावेद साहब की बात कही वो बिल्कुल सही है. Craft को मैं भी बहुत importance देता हूँ and craft actually मैंने subconsciously learn किया है, मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं. जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़ता बचपन से था. तो मेरे फादर का बुकशॉप है, मेरे फादर की बुकशॉप है इंदौर में.
wow.
तो मुझे पढ़ने को काफी किताबें मिली, मैंने बहुत सी पढ़ाई की मतलब, एंड वो मैंने शौक में किया, ऐसा नहीं कि कुछ करना था. तो उससे क्या हुआ कि जब मैं पोइट्री लिखने आया तब मैंने ऑलरेडी बहुत सी पोइट्री लिखी थी. जब 2009-11 में मैंने 2009 में शायद मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया था, तब मैंने ऑलरेडी बहुत सी पोइट्री पढ़ी हुई थी. तो ऑफकोर्स एक भाषा का एक नॉलेज था, एक साउंड का नॉलेज था, एक मीटर जो रहता है मतलब पोइट्री के अंदर वो उसका नॉलेज था. सिमिलरली मैं गाने बहुत साल से सुन रहा हूँ, शौकिया तौर पर सुन रहा हूँ, बेवजह एनालिसिस करता रहता था. लेकिन वो भी एक तरह से क्राफ्ट डेवलपमेंट ही हुआ ना.
एब्सोल्युटली,
क्योंकि आपको एक तरफ पोएट्री आती है, मीटर आता है, साउंड समझ में आ रहा है, देन आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आप मूवीज देख रहे हैं, फिर आप बेवजह ये भी सोच रहे हैं कि गाना यहाँ पे क्यों है, कैसे पिक्चराइज हुआ है, ये किस जबान में लिखा गया है, और ये कैरेक्टर की जबान में लिखा गया है इसलिए सही लिखा गया है. इट माइट समटाइम्स बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बट ये कैरेक्टर की जबान है. इस तरह की चीजें एनालाइज करते रहना, सोचते रहना, तो काफी हद तक क्राफ्ट डेवलप हुआ था जब मैं लिखने आया था. ऑफ कोर्स नेवर कॉन्शियसली,
राइट,
बट इट वाज ऑलवेज पैसिवली एंड अनकॉन्शियसली,
राइट.
तो ये एक चीज थी. एंड रही बात स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग की, तो ये है कि वो भी क्योंकि देखी बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा मूवीज देखता था मैं. कलकत्ता में जॉब करने के बाद घर आके से मूवीज ही देखा करता था.
आई कैन वेल इमेजिन.
हाँ, तो मूवीज और सीरीज देखा करता था, तो एक सबकॉन्शियस लर्निंग थी कि डायलॉग ये होता है, स्क्रीन पे ये होता है. मैं थोड़ा मतलब, तो अब यहाँ आके बम्बई आके फिर मैंने स्क्रीन पे और डायलॉग काफी हद तक सीखा. एंड ऑफकोर्स सीखा तो खैर मैंने गाने लिखना भी, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी गाने लिखे नहीं थे. मैंने जब पहली दफा गाने लिखे तो करीब करीब सिंगल के लिए थे, एंड उसके बाद मुक्काबाज के लिए थे. तो वो भी मैंने सीखा ही, मतलब कि धुन पे कैसे लिखना, या फिर अगर बिना धुन के गाना पहले लिखना है तो किस तरह गाना लिखना कि एक धुन भी अच्छी बन सके.
बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं.
काम करते करते भी सीखा एंड लोगों से भी सीखा जिनके साथ मैं काम कर रहा था. एंड ऑफकोर्स जैसे जैसे आप काम करते हैं आपको ये भी पता चल जाता है कि जो काम हो रहा है ऑलरेडी, जो बॉडी ऑफ वर्क दूसरों की एग्जिस्ट करती है, उसमें से लर्निंग कैसे एक्सट्रैक्ट करना.
तो ये बेसिकली ओवरवेल्मिंग बात बिल्कुल नहीं थी आपके लिए. यू वो आपकी आंखें फटी नहीं रह जाती थी इन मोमेंट्स ऑफ यू नो न्यू लर्निंग?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फटी पड़ी रहती है.
इन मोर वेज देन वन.
वो मुझे ये सब रेट्रोस्पेक्ट में बड़ा अच्छा लग रहा है बोलना कि मैं सबकॉन्शियसली ट्रेन था. लेकिन जब जब मुझे काम मिला है, जब जब मुझे स्टेज पे चढ़ के पोएम पढ़नी हुई है, जब जब मुझे गाना लिखना हुआ है, मेरी इनफाइनाइट फटी पड़ी रही है. क्योंकि हमेशा मतलब क्लूलेसनेस रही है मुझे, और हमेशा मतलब मैं डरा हुआ रहा हूँ कि अब इनको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता, ये मुझे निकाल देंगे.
इंटरेस्टिंग
तो वो एक मतलब ऐसा, ये अभी रेट्रोस्पेक्ट में बड़ी कूलली बता रहा हूँ. उस दौरान तो मैं बहुत, इनफैक्ट अभी भी मैं कोई गाना लिखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरा आखिरी गाना है, अब नहीं लिख पाऊंगा.
मैंने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा होता है. मगर वी वर टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड क्राफ्ट, एंड यू नो आपका, आपने एक कविता लिखी है, अभी मैं मर नहीं सकता. एंड ये मेरे प्रोड्यूसर की काफी फेवरेट है. बट मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन इट कम्स टू द मिक्सचर, द स्वीट स्पॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इज व्हेन योर फीलिंग्स आर भरपूर, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है इज अलग बात. ये जो कविता है, ये जो आपने स्लैम किया, इट्स it hits home so hard that thoda sa insaan overwhelm ho jata. It's about the things that give you purpose in life, right? So, ye kaise frame of mind mein aapne likhi thi ye?
Ye maine kafi बेकार माइंड में लिखी थी, मतलब काफी डिप्रेस और काफी लो फेज में लिखी थी. पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगेन मैं रिट्रोस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जब मैंने लिखी थी तब तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये पोएम लिखनी है, ये किसी को सुनानी है. ये तो इनफैक्ट उन पोएम्स में से थी जो मैंने ढाई तीन साल तक पढ़ी ही नहीं लोगों के सामने, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदगी में था कि इस तरह की पोएम बहुत इमोशनली एक्सपोज कर देती है मुझे, समझ रहे हैं?
राइट.
तो मैं ये पढ़ता भी नहीं था कहीं पर पब्लिकली, तो बहुत इट टुक मी अराउंड टू टू एंड हाफ इयर्स टू जस्ट गेट कंफर्टेबल विद, मतलब यू नो, इसको लोगों के सामने पढ़ने में. मतलब जब लिखी थी तब तो बस एक आउटलेट की तरह से लिखी थी, कैथारसिस की तरह से लिखी थी. ये सब इतना, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, और ऐसा कुछ कभी मैंने पोएम लिखी नहीं है. मैंने तो बस अपनी फीलिंग्स लिखने के लिए लिखा है, और कभी ये भी नहीं सोचा कौन सुनेगा कौन पढ़ेगा. वो तो अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ऐसा लगने लग गया है कि लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा.
हाँ, लेकिन आप अपना करते जाइए, आप अपना लिखते जाइए. आई एम श्योर रिलेटेबल कंटेंट सब हैशटैग सब जुड़े रहेंगे उसके साथ. लेकिन यू नो, मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि आपके कोई फेवरेट राइटर्स, द लेसर नोन टैलेंट, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द ओपन माइक, इन द यू नो ओपन, क्या बोलते हैं, स्पोकन पोएट्री वाला जो सर्कल है, who are the people that are inspiring you, that are blowing your mind?
अभी तो मेरा काफी नाता टूट गया है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैं नाम लेना भी चाहूँ तो, मतलब पिछले एक साल से काफी नाता टूट गया है मेरा, तो मैं अगर कोई नाम लूंगा तो बड़ा ही अजीब रहेगा.
नहीं,
मैं अब बहुत कम इवेंट्स में भी जा रहा हूँ, और बहुत मैं, लेकिन हाँ, जो इंडस्ट्री में है उनमें से कुछ लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, वो नाम मैं बोल सकता हूँ.
बोलिए ना, बिल्कुल.
जैसे मुझे जावेद साहब की राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है. जावेद साहब की इवन जो वीडियोस होती हैं, स्पीचेस वगैरह होती हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जो बातें कहते हैं, उनसे मैं बहुत मुतासर हूँ.
एब्सोल्युटली.
फिर मुझे इरशाद कामिल साहब लिरिसिस्ट में बहुत ज्यादा पसंद है. वरुण ग्रोवर की लिरिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, रेंज बहुत अच्छी है उसकी. इरशाद साहब का भी वही है, पंजाबी हिंदी उर्दू तीनों का मिक्सचर है. बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे ये दो लिरिसिस्ट मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की चीजें लिखने के लिए. बहुत स्टडी भी करता हूँ मैं इन लोगों का काम, मुझे बहुत मजा भी आता है वो करने में. फिर स्क्रीन राइटिंग में अगर आप देखें तो स्क्रीन राइटिंग में भी, मतलब अगर आप इंडिया में अगर मैं देखने जाऊँ तो एक जूही चतुर्वेदी की जो कुछ फिल्में मुझे बहुत पसंद है.
अच्छा.
इवन वरुण की मसान, और ये वरुण ग्रोवर का मुझे मसान और सीक्रेट गेम्स वगैरह बहुत पसंद है. फिर
खतरनाक इंसान
अलावा, हाँ, मतलब आप जैसे इवन कुछ रजत कपूर की फिल्में हैं, या आप अनुराग कश्यप जो एज अ राइटर है, सिर्फ हम उन्हें एज अ डायरेक्टर जानते हैं, बट एज अ राइटर अनुराग कश्यप सो स्ट्रॉन्ग एंड सो गुड.
राइट.
मतलब उनका काम मुझे बहुत पसंद है. इन लोगों से बहुत इंस्पायर होता हूँ. जैसे मेरी दोस्त है गजल दलेवाल, तो उसके भी अलग 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 काम उसका सारा आ रहा है.
हर लेटेस्ट मूवी
मुझे बहुत पसंद आता है. हाँ. और बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है, क्योंकि काफी लोग आपके दोस्त भी हैं, काफी लोग आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं.
बिल्कुल बिल्कुल.
तो ये लोग जब काम करते हैं तो इतनी खुशी से देखने का मन करता है कि मतलब ऐसा लगता है कि हमने किया है, हमने कुछ पार्ट प्ले किया है. उन्होंने किया कुछ नहीं होता है.
हाँ.
मतलब वो खुशी बहुत ज्यादा होती है कि अरे ये दोस्त ने किया है, अरे ये कितना अच्छा है, मतलब ये वैसा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है. मतलब
नहीं, ये रिश्ते काफी इंस्पायरिंग लगते भी है हमें जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, बिकॉज यू गाइस आर इन द सेम लीग एंड यू हैव द सेम, आई डोंट नो इफ स्ट्रगल्स बट फियर्स एंड यू नो जस्ट द सिमिलर लाइफ, सो दिस इज रियली एंडियरिंग टू नो आल्सो.
वो है, मतलब देखिए क्या है कि, मतलब वो ही तो है, मतलब अल्टीमेटली देखिए इंडस्ट्री का अगेन, मतलब मैं दो तीन साल से हूँ, और मतलब शायद थोड़ा पेसिमिस्ट भी हूँ इसलिए भी मैं सिनिकल भी व्यू पॉइंट है, पर अल्टीमेटली इंडस्ट्री भूल जाती है लोगों को.
बिल्कुल
ठीक है. वो आप कितने भी सक्सेसफुल हो, मैं नाम कह लूँ, मतलब बड़े से बड़े सितारों को भूल रही है, मतलब और उन्होंने बहुत अच्छे दिन नहीं देखे अपने आखिरी दिनों में. तो मेरा मानना है कि वो हमारे साथ भी होगा, वो हर किसी के साथ होगा ही. किसी के साथ जल्दी होगा, किसी के साथ थोड़ा देरी से होगा, डिपेंडिंग ऑन किस्मत एंड टैलेंट या व्हाटएवर जो भी सरकमस्टेंस. तो मेरा मानना है दोस्ती यारी ही रह जानी है.
बिल्कुल.
वो ईमानदारी से करनी चाहिए और वो अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग रह जाना है, मतलब अल्टीमेटली आपके साथ जब इंडस्ट्री ऑफिसर हटा देगी.
सर, आपसे तो बात करके ऐसा लग रहा है कि ये बातें अभी यहाँ पे कट शॉर्ट करनी नहीं चाहिए. देयर इज सो मच मोर दैट कैन कम फ्रॉम दिस. And I would love to have you on air again, Hussain. I mean,
surely.
Hussain, all said and done, thank you so much for your time.
Thank you so much. Thank you so much for your time as well. Yeah, I'm very glad that you have me call.
The feeling is mutual. I mean, this is a very unjustified conversation. Ye aur thodi lambi baatein honi chahiye.
Tune in Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m. for your daily dose of what's trending in Mumbai with Meha. Only on 104.8 Ishq. Do the Ishq, baby. Ishq.